पृष्ठ संख्या 15, अध्याय 2, दक्षिण अफ्रीकी सत्याग्रह, अन्वेषण, परीक्षण एवं प्रयास। गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति तथा सार्वजनिक ढोंग के संदर्भ में किया और उसे जन आंदोलन का रूप दिया। सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में श्वेत शासकों द्वारा भारतवासियों एवं अन्य एशियाई लोगों के विरुद्ध अपनाई गई संगठित रंगभेद नीति तथा उसके सार्वजनिक दिखावे के विरुद्ध था। इस नीति से उत्पन्न अन्याय, शोषण तथा दमन के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह का सफल आंदोलन किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी 20 वर्ष तक रहे और वहाँ के निवासियों एवं एशियाई लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। हिंदुस्तान के समान अफ्रीका भी एक प्रायद्वीप है। यूरोपियनों के आगमन से पहले दक्षिण अफ्रीका में केवल तथाकथित हब्सी लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में जिस समय गुलामों के प्रति अत्याचार का बोलबाला था, उस समय अमेरिका से भागकर कुछ हब्सी दक्षिण अफ्रीका में आकर बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका के लोग शारीरिक तौर पर बलवान होते हुए भी काफ़ी डरपोक होते थे। इसी कारण मुट्ठी भर गोरी जाति के लोग इन पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में पहले डच आए और बाद में अंग्रेज। नेटाल सरकार की मांग पर हिंदुस्तानी मजदूरों का पहला जहाज 16 नवंबर 1860 को नेटाल पहुंचा। तत्पश्चात बहुत से भारतीय एवं एशिया के अन्य देशों से लोग मजदूरी एवं व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव की नीति अपना रखी थी। सरकार मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देती थी, पृष्ठ संख्या 16, जिससे वे अपनी मौलिक शारीरिक अनिवार्यताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। यदि कोई मजदूर कभी अपनी वास्तविक मजदूरी मांगता भी तो उसे अंग्रेजों के कोड़े खाने पड़ते थे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की स्थिति बिल्कुल खरीदे हुए गुलामों जैसी थी। हिंदुस्तानी मजदूर गिरमिटिया के नाम से जाने जाते थे। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला हाजी एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। डरबन बंदरगाह पर जब गांधी उतरे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हिंदुस्तानियों को जो कष्ट भोगने पड़ते थे उनकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। गांधी ने पाया कि भारतीयों के साथ गोरों का व्यवहार बहुत ही अशिष्ट और अपमानजनक था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को पग पग पर गोराशाही और रंग द्वेष का सामना तथा उनसे निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उनके साथ पहली घटना उस समय घटी जब वे रेलगाड़ी के पहले दर्जे के कक्ष में सफर कर रहे थे। एक गोरा यात्री आया, उसने गांधी की तरफ देखा और उन्हें अश्वेत पाकर बड़ा परेशान हुआ। बाहर निकला और एक दो अफसरों को लेकर आया। किसी ने गांधी से कुछ नहीं कहा। आखिर एक अफसर आया, उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। गांधी ने कहा, मेरे पास तो पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। गांधी ने कहा कि मेरे पास इस डिब्बे का टिकट है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना ही पड़ेगा और यदि तुम नहीं उतरे तो तुम्हें सिपाही जबरदस्ती उतार देगा। गांधी ने कहा, सिपाही भले उतार दे, मैं खुद नहीं उतरूंगा। सिपाही आया, उसने गांधी का हाथ पकड़ा और धक्के देकर नीचे उतार दिया। गांधी ने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल दी। गांधी ने दूसरी ट्रेन से आगे जाने का निश्चय किया और इसके साथ ही एक संकल्प लिया जो उनकी आगे की लड़ाइयों का मूलाधार बना। गांधी ने विचार किया, या तो मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा या फिर स्वदेश लौट जाऊंगा। मुकदमे की पैरवी छोड़कर भाग जाना तो मात्र कायरता होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक बैठे हुए रंगभेद के महारोग का केवल लक्षण मात्र है। इस गहरे रोग को मिटाने का मुझे निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करते हुए वह स्वयं को जो भी कष्ट सहने पड़े सो तो सहने ही चाहिए, और उनका विरोध रंग द्वेष मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 17। आगे चलकर गांधी को और अधिक परेशानी उठानी पड़ी। इस बार उन्हें जो कटु अनुभव हुआ वह ट्रेन में नहीं, चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं था। गांधी के पास सिक्रम का पहले दर्जे का टिकट था, परंतु सिक्रम वाले ने जब देखा कि उनकी गोरी चमड़ी नहीं है तो उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। जब गांधी ने उचित उत्तर दिया तो सिक्रम कंपनी के गोरे मुखिया ने उन्हें सिक्रम के भीतर गोरे यात्रियों के साथ बैठाने से इनकार करते हुए बाहर कोचवान की बगल में दाएं बाएं जो दो सीट थी उनमें से एक सीट पर बैठा दिया। गांधी के शब्दों में यह निरा अन्याय व अपमान था, पर उन्होंने इस अपमान को भी सह लिया। जोर जबरदस्ती से अंदर बैठने की उस समय उनकी स्थिति एवं सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए गांधी ने समझदारी से काम लिया और बाहर बैठ गए। सिक्रम के पार्टी कापे पहुंचने पर गांधी को पुनः अपमान सहना पड़ा। गोरा मुखिया जो सिक्रम के अंदर बैठा था वह अब गांधी के स्थान पर बैठना चाहता था, क्योंकि उसे सिगरेट पीनी थी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वही कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और उसे पायदान पर बिछाकर गांधी से कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। गांधी इस अपमान के सहने में असमर्थ थे। गांधी ने डरते डरते कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने यह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे अब अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। गांधी ने इतने कहा ही था कि उन पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा गांधी की बाँह पकड़कर नीचे खींचने लगा। गांधी ने सीट के पास के पीतल के खिकचे को जोर से पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे टूट जाए पर खिकचे को नहीं छोड़ना है। गांधी पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे यात्री देख रहे थे। गोरा गांधी को गालियां भी दे रहा था तथा मार भी रहा था, परंतु गांधी चुप थे। यात्रियों में से कई को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई उस बेचारे को वहाँ बैठे रहने दो, उसे मारो मत, उसे वहाँ नहीं तो हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर मारे शर्म के उसने गांधी को मारना बंद कर दिया। पृष्ठ संख्या 18। ट्रांसवाल में काले रंग के लोगों के लिए जो कानून बने हुए थे उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी पर अधिकारपूर्वक चल नहीं सकते थे और रात 9 बजे के बाद परवाने के बिना बाहर नहीं निकल सकते थे, मगर वहाँ के सरकारी वकील ने गांधी को एक पत्र दे दिया था जिसके अनुसार वे कहीं भी जा सकते थे, पुलिस उसमें दखल नहीं दे सकती थी। गांधी इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलते थे। एक बार गांधी जब घूमने जा रहे थे तब एक सिपाही ने बिना कुछ बोले या मना किए गांधी को धक्का मारा, लात मारी और पटरी से नीचे धकेल दिया। इस प्रकार अपने सत्य के प्रयोगों में गांधी को क्रूरता और करुणा के नाना रूपों के दर्शन हुए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने डच एवं अंग्रेजों के युद्ध को देखा। युद्ध ने गांधी की अंतरात्मा को हिला दिया। डच और अंग्रेज लोगों में अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने में प्रायः टकराहट हो जाती थी, मुठभेड़ें हो जाती थी। मजुबा की पहाड़ी पर अंग्रेजों की हार हो गई। इसका बदला उन्होंने बोअर युद्ध में लिया, जो सन 1899 से 1902 ईस्वी तक चला। दक्षिण अफ्रीका में डच लोग बोअर के नाम से पुकारे जाते थे। वे बड़ी बहादुरी से लड़े किंतु हार गए। हार के परिणामों को उन्होंने बड़ी मर्दानगी से सहन किया। बहादुरी से भोगा हुआ सच्चा कष्ट पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देता है। यह ऐसी दुख अर्थात तपस्या की महिमा है और इसी में सत्याग्रह की कुंजी है। अपनी संस्कारगत एवं उपार्जित नैतिक शक्ति के आधार पर गांधी उस विदेशी भूमि पर आंदोलन चलाने के लिए तैयार थे। एक तरफ सताए और दबाए हुए भारतीय थे और दूसरी तरफ रंगभेद की नीति के पोषक शासन व्यवस्था। 1894 ईस्वी में प्रिक्टोरिया सरकार ने हिंदुस्तानियों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक पास किया। गांधी ने इस विधेयक के विरोध में भीषण संघर्ष शुरू करने की सलाह दी। गांधी ने धारा सभा में एक अर्जी भेजने के लिए तैयार की। यह अर्जी हिंदुस्तानियों की सर्वप्रथम अर्जी थी। इस अर्जी का काफ़ी प्रभाव हुआ, लेकिन फिर भी विधेयक धारा सभा में पास हो गया। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों का इस तरह से संघर्ष का यह पहला अनुभव था। दूसरी बार जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, तब नेटाल के गोरों ने गांधी पर आरोप लगाया कि उसने भारत में बहुत सी झूठे बातें कही हैं तथा वह नेटाल में हजारों भारतीयों को सरकार के विरुद्ध उकसाना चाहता है। इस कारण नेटाल के गोरों ने जहाज से उतरते ही गांधी पर गालियों और पत्थरों से बरसा कर दी। पृष्ठ संख्या 19। फिर भी गांधी घबराए नहीं, उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। 1899 से 1902 के बीच बोअर युद्ध में अंग्रेजों ने डच लोगों को हराया। इस हार में बोअर राज्यों में हिंदुस्तानियों की दुर्दशा भी एक कारण थी। गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज घायलों की भरपूर सेवा की। युद्ध के बाद गांधी एवं अन्य हिंदुस्तानियों की यह आशा थी कि बोअर युद्ध के समस्त अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की स्थिति में अवश्य सुधार होगा, किंतु स्थिति सुधारने के बजाय बिगड़ती ही गई। जिन हिंदुस्तानियों ने वहां जमीन खरीदी थी, तहसील अधिकारी ने 1885 ईस्वी के कानून नंबर 3 का हवाला देकर उस जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी ने पाया कि प्रिक्टोरिया का एशियाटिक विभाग केवल हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए ही खोला गया है। गांधी ने यह महसूस किया कि उन्हें अपने सत्याग्रह आंदोलन का फिर से श्री गणेश करना पड़ेगा। जब गांधी ने ट्रांसवाल में चेम्बरलिन से मिलने की कोशिश की, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। रंगभेद की सीमा 22 अगस्त 1906 को उस समय अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई जब ट्रांसवाल सरकार का एशियाटिक बिल का मसौदा प्रकाशित हुआ। इस बिल के अनुसार एशियाई लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मोहल्ले से बाहर वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे। ऐसे कानून का मुख्य कारण हिंदुस्तानी व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाना था। बिल में हिंदुस्तानियों के प्रति घृणा व द्वेष के सिवा और कुछ नहीं था। गांधी ने इस बिल को खूनी कानून की संज्ञा दी।